हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 11 और 12। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचि न यत्र युष्मच्चरणं भुजसव। महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णयुतमेष मे वर। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परं। जिह्वानवक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दं। कृष्णाय नो नमति यच्चिरैकदापि तानानयध्वमसतो अकृतक्वेषु कृत्या। तस्मात् संकीर्तनं यस्य सर्वमङ्गलमोहसां महत्तामपि कौरव्या विद्यैकान्तिकनिष्कृतं। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवलकिशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो कभी भी चैन से सो नहीं सकते, और वो भले उनको कितनी ही शक्ति प्राप्त हो जाए, भले उनको कितना ही धन प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना तब तक उनको कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। और चाहे वो कितना ही बड़ा बड़ा ऋषि मुनि ही क्यों ना बन जाए, लेकिन यदि भगवान की कथाओं में उसको आनंद नहीं आता है, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करता है, तो वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसको भगवान की कथाओं में आनंद नहीं आता है वो हमेशा संसार में जन्म मरण के चक्कर में ही गिरा रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहन्या प्रीतार्थकरण निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ती। अहन्या प्रीतार्थकरण निशिनिशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रा। दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपि देव। युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरंती। अहनी यानी दिन के समय, आपृत अर्थात व्यस्त, आर्थ मतलब दुखदायी कार्य, करणा यानी इंद्रियां। वो लोग जो सदैव पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और निशी निशायाना, निशी मना रात में, निशायाना मतलब अनिद्रा, उनको रात को भी वही चिंता ही खाएगी। ऐसा नहीं कि सारा दिन वो यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहेंगे तो रात को आनंद से सो जाएंगे, नहीं, रात को भी निशयाना अर्थात अनिद्रा, उसको रात को सुख की नींद कभी नहीं आएगी। जब तक जीव भगवान के साथ खुद को जोड़ नहीं लेता है, जब तक भगवान की कथाओं और नाम के साथ नहीं जुड़ता है, तब तक उसे सुख की नींद आनंद से नहीं आती है। क्यों? क्योंकि नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रा। नाना मनोरथ, नाना मना बहुत सारे, मनोरथ अर्थात मानसिक चिंतन, दिया यानी बुद्धि द्वारा, क्षण निरंतर, भग्न यानी टूटी हुई निद्रा, बार बार उसके जो मनोरथ हैं कि यार ये मुझे आज कंप्लीट करना था, ये नहीं हुआ, ये मुझे आज ये डील करनी थी वो नहीं हुई, ऐसा करना चाहिए था, पूरी रात। आज हम देखते हैं 99% लोग जो है ना रात को सुख से सोते नहीं हैं। रात भगवान ने दी है सोने के लिए, आनंद से लिए। लोग 1 बजे तक 2 बजे तक 3 बजे तक जाग रहे होते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती सुकून की, और वो ये नहीं सोचते कि आधी रात को राक्षसों की तरह जाग जाग कर हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि वो जो सुबह का पल वो लोग देख ही नहीं पाते। सुबह का सूर्य जब उदय होता है, जब प्रभात का समय होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग जो है वो भगवान की कथा सुनते थे, जल्दी लाइट भी नहीं होती थी ना ज़्यादातर, तो क्या करते थे, बस संध्या होती थी घर पे आते थे, भगवान को प्रणाम करते थे, कुछ देर भजन कीर्तन करते थे, फिर प्रसाद खा के सो जाते थे 9-10 बजे तक। और फिर सब लोग, हमको याद है हमारे पेरेंट्स भी सब लोग सुबह सवेरे उठते थे, 5 बजे तक तो सबको उठ जाना होता था, फिर कोई नदी में स्नान करने जा रहा है, कोई कहाँ, और फिर उठ के आके भगवान का नाम लेते थे। आज कहाँ है जीव के जीवन में, तो क्यों नहीं है, क्योंकि उनको केवल इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य लगता है। इसलिए जो दिन भर इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यस्त रहते हैं, उनको रात में नींद आती नहीं है, क्योंकि नाना मनोरथ दिया, विविध प्रकार के मानसिक चिंतन में उनकी बुद्धि जो है ना वो लगी रहती है, उनकी निद्रा उड़ जाती है। और यहाँ तक बताया, दैवाहतार्थ रचना ऋषयोपि देव। दैवा यानी अति मानवीय, जो देव है, देवता है, वो आहत अर्थ यानी हताश, वो भी हताश हो जाते हैं। रचना योजनाएं ऋषय यानी ऋषिगण अपि भी देव, हे प्रभु। युष्मत, क्यों उनकी है ना सारी जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी योजनाएं वो हताश क्यों हो जाती है, आतर्थ क्यों हो जाती है, क्योंकि युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरंति। युष्मत् भगवान को कहते हैं ब्रह्मा जी, युष्मत् प्रसंग, क्योंकि आपकी कथाओं से विमुखा अर्थात विरुद्ध, जो व्यक्ति इह मना इस जगत में, प्रेजेंट जीव जो आज इस जगत में है, यदि वो भगवान की कथाओं से विमुख होते हैं तो संसरंती, संसरंती का मतलब होता है वो जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है, उसको न दिन को सुकून है, न रात को सुकून है, ना ही उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, ना ही वो आनंद से जी सकता है, और ना ही मरने के बाद आनंद के लोक में जा सकता है। तो कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा हानि है जीव का। और ये जो कथा श्रवण करने के लिए मिलती है, उसमें जीव को आनंद नहीं आता, वो सोचता है कि भाई कथा क्या सुननी है, तो मुझे पता है पहले से बहुत सारी चीज़ें, तो क्या भगवान की कथा श्रवण करें, इससे बेहतर है कोई दूसरा काम किया जाए जिससे कुछ लाभ हो। यहाँ बताया जा रहा है कुछ लाभ होने वाला नहीं है आपको, ना इस भौतिक जगत में सुख आएगा और ना ही आध्यात्मिक जगत में सुख आएगा, अगर आप दैवाहतार्थ जना ऋषयोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरते। चाहे देवता बन जाओ, बड़े बड़े ऋषि मुनि बन जाओ, लेकिन यदि भगवान की कथाओं में आपको आस्वादन नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो संसरन्ति, तो फिर आपके जीवन में केवल जन्म मरण का चक्कर ही लिखा हुआ है। बहुत ही गंभीर बात है। अनुवाद देखिए, ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में अनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर से और बहुत ही डिटेल से हमें समझाएंगे कि ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है कि जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है, वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीम काय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती हैं। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। अब यहाँ सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे शिला प्रभुपाद जी, कि कारखाने जो होते, बड़े बड़े मिलें होती हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पर जो भी लोग होते हैं, मजदूर क्या सोचते हैं, जो वर्कर होते हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम उसमें काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और जो मालिक होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि किस तरह से अपने इन जो हमारी उपज है, उत्पाद है, उनको कैसे बाजारों में जाकर वितरित किया जाए। बस उनके जीवन का लक्ष्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यदि ऐसा ही जीवन रहा तो कारखाना जो है वो क्या है, नरक का दूसरा नाम है। जो फैक्ट्रीज हैं, रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तभी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती हैं। अनिद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। आदि दैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संसार हेतु परमाणु शक्ति में खोजी करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ पर साफ साफ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, चाहे कितना ही एजुकेशन भौतिक हो या फिर कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की कथाओं को नहीं श्रवण करता या फिर भक्ति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। भक्ति का सिद्धांत क्या है? श्रवणम कीर्तनम और भगवान को स्मरणम। यदि ये सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसको कभी सुख नहीं मिलेगा, ना वो उसको भौतिक जगत में नींद आएगी, और क्योंकि उसकी इतनी सारी है ना विशेष होती हैं, उतनी योजनाएं होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी जो भगवान को भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश होते हैं। ना केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक हैं और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। अतएव भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैसा ही श्लोक में बताया गया है। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान से प्रेम करना। भगवान को हमारे ज्ञान से, क्या हमने सीखा है, क्या हम हमारी योजना है, उससे कोई मतलब नहीं है। बुद्धि तो भगवान ने दी है, तो क्या उसके पास तो हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धि, तो भगवान बुद्धि से प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रेम और भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान हमारे प्रेम को देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं, हमारे श्रद्धा को देखते हैं, उनके प्रति जो हमारा आकर्षण है उससे भगवान आकर्षित होते हैं। तो दूसरे किसी भी जो सिद्धांत है, भले भगवान के ही दूसरे स्वरूप हैं, भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप जो परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उन सबको भी जो प्रसन्न करने वाले होते हैं उनसे भी भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान केवल उसी से प्रेम करते हैं जो भगवान के स्वरूप में भगवान से प्रेम करता है, जो भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। और वे निर्विशेषवादी जो आत्म मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफ़ी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच लें, किंतु अंततः भक्ति में स्थित ना होने से वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भवबंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि ये मत समझना ब्रह्म ज्योति में जाकर सुख से आनंद से वहीं पर आनंद करोगे, नहीं। जीव आत्मा प्रेम के लिए तरस रही है और जब तक उसको भगवान के साथ, उसके प्रेमी के साथ मिलाया नहीं जाता, चाहे वो किधर भी चली जाए वो भटकती रहेगी, उसको आनंद नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्योति तक पहुँच लें किंतु अंततः भक्ति में स्थित ना होने से वे पुनः भौतिक जगत में गिरते हैं और पुनः भवबंधन की को भोगते हैं। तो उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 32 में बताया गया। ये नीरविंदाक्ष विमुक्तमानिना विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम तत पतंत्य धूना धृतयुष्मदंग्रिया। अर्थात जो वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच लें, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा वैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथाकथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। कितना ये भयंकर है कि हम इतनी हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन वो लोग जो कितनी कठिनता से भगवान के ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान का धाम जब तक नहीं मिल जाता, भगवान का सानिध्य जब तक नहीं मिलता, जब तक भगवान के साथ प्रेम करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक आनंद नहीं मिलता। तो वो लोग झूठा बहकावा है ये कि हम ब्रह्म ज्योति में जाकर सुख से बैठ जाएंगे, नहीं, वहाँ पर आनंद नहीं है। आनंद तो केवल भगवान के प्रेम में है, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः निर्माण करने में है। इसीलिए जो वहाँ चले भी जाते हैं तो भी वैकुंठ में आश्रय के अभाव में तथाकथित मुक्त लोग भी भौतिक संसार में आ गिरते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंध में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान हैं। भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है, वही असली धर्म या दर्शन है। 6 स्कंद में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। तो यमराज जी क्या बताते हैं? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुरेशयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतोनु विद्या धरचारणादया स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकी वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्म भागवतं वटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। धर्म के सिद्धांत का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं महत अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते हैं, तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगी असुरों मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधरों तथा चरणों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ब्रह्मा नारद शिव कुमार कपिल मनु प्रहलाद महाराज जनक महाराज भीष्म बलि सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उसका प्रचार करने के लिए अधिकृत हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम 6.3.19 से लेकर 20 तक यमराज जी बताते हैं कि धर्म जो है वो भगवान के द्वारा ही उपदेश होता है और किसी के पास ये शक्ति नहीं है कि वो धर्म का निर्माण कर सके। और धर्म का निर्माण तो भगवान करते हैं, लेकिन उसको समझने वाले ये 12 महाजन हैं और इन्होंने जिस तरह से शिक्षण किया है, जिस तरह से आदेश दिए हैं, तो हमें उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना चाहिए ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। और वाले जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, जितने भी तथाकथित हैं, यदि वो इनकी बात नहीं समझ रहे हैं तो समझो वो धर्म के सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये जितने भी महाजन हैं, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, शंभू यानी शिव जी, नारद अर्थात देवर्षि और कुमार अर्थात चतुर्ष कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म और महाराज बलि, वेद व्यास जी और स्वयं यमराज, इन सब ने सिर्फ एक ही सिद्धांत को स्वीकार किया है और वो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना, भगवान के पवित्र नाम को जप करना। तो हमको उन्हीं के पद चिन्हों पर लेकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी भी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में मिलता है। धर्म के प्रवर्तन कर्ता ये 12 महाजन है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते, वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता है, वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन है जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गुह्य है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। अतएव जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है, उसे अपने को अबोध जानता अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ये नैतिक बनना यानी अच्छा व्यक्ति बनना, वो तो सिर्फ इसलिए है कि आप धर्म पर चलने के लिए आपके अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन चाहिए। धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं, मतलब जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है, जो हर कोई गलत कार्य करता है, उसके लिए धर्म वो तो स्वीकार कर ही नहीं सकता। वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। तो अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। अहिंसा करो, ये मतलब किसी का न वध मत करो, दया करो, वो तो जो बिल्कुल भक्ति से बिल्कुल दूर हैं, दिग्भ्रमित हैं, उनके लिए कि कम से कम अहिंसा करेंगे या फिर न किसी को कष्ट नहीं देंगे, दया करेंगे, सच बोलेंगे, तो फिर क्या होगा, वो धर्म को पालन करने के योग्य हो जाएंगे। पहले मनुष्य बनना, उसके बाद धर्म को पालन करना। तो क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता है, वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। भगवान के शब्दों को समझना, धर्म को समझना, उसके लिए पहले जीवन पवित्र होना चाहिए। इसीलिए स्कॉन में आते ही हमको 4 नियम पालन करने के लिए बताया जाता है कि भई आपको मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना है, अपराध नहीं करने हैं, निंदा नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, तो वो धर्म के सिद्धांतों को समझने के योग्य बनेगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक या अहिंसक नहीं बनता, वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त करता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते धर्म तो उनके लिए भी मुश्किल है, यह अत्यंत गुह्य है, बहुत सीक्रेट बात है धर्म। क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। धर्म का जो रियल सिद्धांत है वो क्या है जानते हो, वो ये है कि मैं भगवान का दास हूँ। एक ही सिद्धांत है, एक ही धर्म है जीव आत्मा का, कि गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानुदास भगवान के चरण कमलों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ, ये वास्तविक धर्म है। और शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं असली सिद्धांत में जब अवगत होता है, जब जब जीव को ये पता चल जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, तो मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। लेकिन जब तक वो अपने ही मान पूजा प्रतिष्ठा में लगा रहेगा, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे मेरा आदर होना चाहिए, याद रखो भक्तों भौतिक किसी भी वस्तु का जो लोभ है ना वो खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, शास्त्रों को पढ़ें, तो बाकी लोभ धन का भौतिक आसक्ति वो समाप्त हो सकती है, लेकिन जो ये मान पूजा प्रतिष्ठा होता है ना वो लोग बहुत ज़्यादा वो ऐसा होता है ख़त्म नहीं होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अगर आपको भक्ति को प्राप्त करना है, आपको मेरी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो उसका एक ही तरीका है, क्या करो, तृणादपि सुनिचेन, वृक्ष के जो एक छोटा सा तृणादपि सुनिचे, वृक्ष की तरह अपने आप को विनम्र करना है। जितना जितना वृक्ष के अंदर फल आते हैं उतना उतना वृक्ष जो है वो झुकता है। वास्तव में झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अहंकार तो मुर्दे की पहचान होती है, जो खड़ा रहता है बस खाली मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, वो तो जीते जी मृतक है। सम्मान आदर वो सिर्फ भगवान के लिए, भक्त यही सोचेगा कि भगवान को आदर मिलना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, मेरा सम्मान मान कोई वैल्यू नहीं रखता। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि जो नैतिक होते भी हैं, जो अहिंसक होते भी हैं, वो भी धर्म के सिद्धांतों को, असली धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते, यह अत्यंत गुह्य है। क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होने से मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान के का शाश्वत जीवन बिताता है। अतएव जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है, वह अपने को अबोध जनता के का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। जो स्वयं अभी तक मान पूजा प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से समाप्त नहीं कर पाया है, तो फिर उसको कभी भी संसार के लिए लीडर बनने का स्वांग नहीं लगाना चाहिए। ईशोपनिषद के निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया गया है। और क्या बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर ईशोपनिषद के एक श्लोक को, अंधम तम प्रवेशन्ति ये शंभूति मोपासते ततो भूय इव ते तमो यो संभूत्यम रता। शोपनिषद 12। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है, जो धर्म के मामलों में कुछ भी नहीं करता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं की भर्त्सना ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जाएगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बताई। आज हम देखते हैं कि सारे लोग धर्म के नाम पर भक्ति नहीं बताते हैं, धर्म के नाम पर कृष्ण से प्रेम करना नहीं बताते हैं, धर्म के नाम पर अपनी पूजा प्रतिष्ठा बताते हैं। जिधर भी हम जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई धर्म का प्रचारक होता है, ना तो भगवान का नाम होता है ना ही भगवान का कोई विग्रह होता है, बस धर्म का स्थापना। लेकिन यहाँ साफ साफ बताया है अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मोपासते, ये अंधकार से अज्ञानता से जो लोगों को इस तरह से धर्म का प्रचार करते, ततो भूय एव ते तमो, वो तो उनसे भी ज़्यादा
अच्छे तो वो हैं जो धर्म के सिद्धांत को बिल्कुल जानते नहीं हैं, धर्म के मामलों में कुछ कार्य नहीं करते, वो फिर भी अच्छे हैं। लेकिन ऐसा समझते हम लोगों को क्या लगता है, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं ना, लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ बताया गया है कि ऐसे नेताओं से तो वो लोग अच्छे हैं जो नहीं करते, कम अज कम उनकी वजह से कोई भ्रमित तो नहीं हो रहा है। तो धर्म का प्रचार, धर्म का जो वास्तविक सार है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना, एक ही भक्ति जो है वो भगवान की, धर्म का एकमात्र प्रचार है। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए जो कि धर्म के नाम पर कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कुछ सिखाते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि भक्त जब भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं श्रुते क्षिप्ता, तो उस श्रवण के द्वारा जब वो शब्द भगवान की लीलाओं के, भगवान के नाम के कानों के द्वारा हृदय में जाते हैं, तो वो शब्दों के स्वरूप में नहीं बल्कि साक्षात भगवान के स्वरूप में जाते हैं। हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, और भगवान उसी संबंध में, जिस रूप में भक्त चाहता है उसी स्वरूप में भगवान सदैव उनके साथ रहते हैं, और जिस जिस स्वरूप में सदैव भक्त उनका चिंतन करता रहता है, भगवान इतने दयालु हैं कि उसी नित्य स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ब्रह्मा जी कहते हैं, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसि श्रुति क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यथयात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसि सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आसे श्रुते क्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसि सदनुग्रहाय। त्वं भक्ति योग, त्वं मन भगवान को, ब्रह्मा जी कहते हैं आपको भक्ति योग यानी भक्ति योग में परिभावित यानी शत प्रतिशत लगे होते हैं, जो हर पूरी हृदय से पूरे विश्वास के साथ परिभावित शत प्रतिशत जो भगवान की भक्ति करते हैं, और हृत सरोज यानी हृदय के सरोज यानी कमल में आस से निवास करते हो, आप उनके हृदय में निवास करते हो। कैसे? श्रुत ईक्षता, ईक्षता मना देखना, श्रुत मना सुनना, श्रुत मना कान के द्वारा। जब कान के द्वारा भक्तजन आपके आपकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो मतलब कान के माध्यम से आपको देखते हैं, श्रुत ईक्षते यानी कान के द्वारा सुनते सुनते आपके दर्शन कर रहे होते। वास्तव में भगवान को दर्शन करने का एक अलग तरीका है, भगवान को नेत्रों से नहीं बल्कि भगवान को तो कानों के द्वारा देखा जाता है। जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तभी भगवान स्फूर्त होते हैं। आस से श्रुत इक्षुपता तथो ननु नाथ पुंसम, तथो अर्थात पथ यानी पथ, और ननु मन अब, नाथ हे स्वामी, पुंसम यानी भक्तों का, भक्त जैसे जैसे आपकी सुंदर कथाओं को श्रवण करते हैं तो उनके रास्ते से आप उनके हृदय में आ जाते हो और वहीं पर अपना निवास बना देते हो। आसे श्रुते क्षिप्त पथो ननु नाथ पुंसम, और यद यद धियात उरुगाय विभावयंती, यद यद मना जो जो, धिया मना ध्यान करने से, ते तुम्हारा, उरुगाय हे बहु ख्याति ख्यातिवान यानी विभावयंती यानी विशेष रूप से चिंतन, जो जो स्वरूप में भक्त आपका चिंतन करता है, क्योंकि उरुगाया, अब भगवान की तो बहुत सारी मतलब बहुत विख्यात है भगवान। कभी कोई भक्त किसी स्वरूप में उनकी लीलाओं का बखान करता है, कभी कोई किसी स्वरूप में, कभी भगवान के किसी स्वरूप के विषय में बताता है, किसी तरह से कोई गुणगान करता है, कोई नरसिम्हादेव बखान का चिंतन करता है, तो कोई विट्ठल का चिंतन करता है, कोई बांके बिहारी के विषय में बताता है, तो कोई गोपीनाथ के विषय में। तो जो जो भक्त जैसे प्रेम करते हैं ना, तो वैसे ही अपने आराध्य का बखान करते हैं, और जो श्रवण करने वाले हैं, जैसा जैसा वो श्रवण करते हैं वैसा वैसा वो चिंतन करते हैं। तो ये इसका मतलब यद्यद्यात उरुगाय विभावयान यन्ति, यानी जो जो दिया यानी ध्यान करने से ते तुम्हारा उरुगाय हे बहुख्यातिवान विभावयन्ति यानी विशेष रूप से चिंतन करते हैं, तत्तद् वपु तत्तद् वही वही वपु माना दिव्य स्वरूप, वही वही स्वरूप प्राणयसे आप प्रकट हो जाते, उसी उसी स्वरूप में आप प्रकट हो जाते हो सद अनुग्रहाय। क्यों? क्योंकि आप बहुत करुणामयी हो, अपनी अहितु की कृपा दिखाने के लिए आप हर उस स्वरूप को स्वीकार करते हो जिस जिस स्वरूप में भक्त आपको याद करता है, आपका चिंतन करता है। तो आप इतनी अनुकंपा है आपके अंदर, भक्तों के प्रति इतना प्रेम स्नेह है कि आप अपने उसी स्वरूप को धारण करके भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई जा रही है कि सबसे पहले तो भक्त को श्रवण करना है। आसे श्रुते क्षिप्त क्षिपपथो ननु नाथ पुंसम, जैसे जैसे जीव जो है भगवान के विषय में श्रवण करेगा ना, तभी उसके हृदय में भगवान आके बैठेंगे और वहीं पर आकर अपना निवास। ये भक्ति योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, हमको ये याद रखना चाहिए कि भले ही हम और किसी साधन से दूर हो जाएं, लेकिन श्रवण करने से कभी दूर नहीं होना है। क्योंकि जब तक हम लोग श्रवण नहीं करेंगे ना, तब तक हमसे जप भी नहीं होगा। कुछ लोग बोलते ना ऐसे कि भाई मेरे पास श्रवण करने का समय नहीं है, तो मैं खाली जप करता हूँ। फिर वो खाली जप वो थोड़ा समय तक करेंगे, वो बल समाप्त हो जाएगा। श्रवण करने से जप करने का पावर मिलता है, क्योंकि हृदय ना वो हर वक्त मतलब खाली रहता है ना, कुछ सोचने के लिए नहीं होता उसको। क्योंकि श्रवण करेंगे तो भगवान के विषय में सोचेंगे भी, और फिर भगवान भी हृदय में आते हैं, तो फिर हृदय विमल भी होता है। लेकिन अगर भगवान के विषय में नहीं भी श्रवण करेंगे, तो भी कान तो खुले हैं ना कुछ तो सुन रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं ना उसी का चिंतन करते हैं। इसे कोशिश करनी चाहिए कि रोज समय निकाल के भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। अब ये अच्छी बात है कि भगवान हमें किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से श्रवण करने का अवसर दें, वरना तो मेरा जैसा कोई कनिष्ठ जीव भी यदि भगवत वाणी सुना रहा है, यदि श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध वैष्णव के शब्दों को सुना रहा है, तो उसी से सुन लेना चाहिए। लेकिन ऐसे भक्तों के मुख से नहीं सुनना चाहिए जो कि भगवान के इन श्लोकों को, भागवतम के इन अर्थों को, या शुद्ध वैष्णव की वाणी को नहीं सुनाते। कुछ कुछ भक्त होते ना, वो कुछ भी सुनाते हैं, बस खाली हम देखते हैं, हम बाहर जाते हैं सिंध वगैरह में, वहाँ पर क्या होता है कि आते हैं बस भजन गाएंगे, किसी की भी महिमा बताएंगे, कोई भी स्टोरीज बताएंगे। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम शुद्ध वैष्णव के इन शब्दों को श्रवण करें, उसी से वो ये होने वाला है। तो हम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज, ये भक्ति योग की पहली पराकाष्ठा, किसी से भी श्रवण नहीं करना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भागवत सुनिए भागवत स्थाने, जो भागवत को समझता है, जो शुद्ध है, जो भागवतम के ही को एज इट इज शब्द को बताता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी कैसे एज इट इज एक एक शब्द को हमें समझाते हैं, तो उसी के मुख से श्रवण करना चाहिए। और ना केवल जो सुनाना जानता है उसको नहीं, लेकिन जिसने इन सब शब्दों को अपने हृदय में भी धारण किया है और अपने जीवन में भी उनको उपयोग किया है, वही जो है वो आपको बताएगा, तो हमारे हृदय में भी भगवान की भक्ति प्रकट होगी। इसलिए हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम एज इट इज शब्दों को श्रवण करें, ताकि हमारे हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाए और हमारा मन किसी न किसी स्वरूप में भगवान का चिंतन करे और भगवान प्रकट रूप से हमें उसी स्वरूप में दर्शन ले। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि, ये प्रमाणिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस आध्यात्म के विशेष नित्य स्वरूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर यह कथन है कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहते हैं। यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा से अधीन हो जाते हैं, इतने अधिक कि वे भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में भी हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। किंतु यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेशवाहक नहीं होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है, त्वं भक्ति योग परिभावित, यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यानी जब शुद्ध वैष्णव होता है, कोई शुद्ध भक्ति करता है, फिर उसके हृदय में खुद ब खुद एक भाव आता है। ऐसा नहीं कि हमेरे जैसा कोई कनिष्ठ जाएगा और भगवान को बोलेगा, भगवान ऐसा बन के आओ, मुझे ऐसा रूप पसंद है, आप ऐसे बन के आओ, वैसा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि संत तुलसीदास जो है वो भगवान श्री राम की भक्ति करते थे। एक बार वो वृंदावन गए और वृंदावन में जाके देखा तो हर जगह कृष्ण कृष्ण, अब वृंदावन में तो कृष्ण ही दिखेंगे ना, तो बांके बिहारी के सामने जाके खड़े हो गए, प्रणाम भी नहीं किया। तो सबने कहा कि आप प्रणाम नहीं कर रहे हो, भगवान है ये, यहाँ वृंदावन के राजा हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया, तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष लेत रघुवीर, मैं इनको क्यों प्रणाम करूं, ये तो टेढ़े हैं, मेरे प्रभु तो सीधे साधे हैं, वो धनुष बाण पकड़ते हैं, ये बांसुरी से सारी गोपियों को लालचाते, तो ये मेरे इष्ट नहीं है, मैं इनको, मेरा मस्तक तो सिर्फ मेरे आराध्य के सामने झुकेगा। कितना तो सुंदर भाव है। आज तो हम थोड़ी थोड़ी ऐसा नहीं है कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो अपना आराध्य बदल देते हैं। लेकिन जो वास्तविक भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं कि कोई और यदि समुद्र भी दे दे तो मैं ना लूं, और मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, तेरी कृपा की दी हुई बूंद भी मेरे लिए समुद्र है। तो भगवान की कृपा दृष्टि जो है, वो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, तो भगवान स्वयं उसके अधीन बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भगवान को अपना अधीन बना देंगे अपने शब्दों से, नहीं, वो भाव देखते हैं, भगवान हमारा प्रेम देखते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह उस दक्षता का सूचक है जो भगवान की परिपक्व प्रेमा भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले क्या है? श्रद्धा।
श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है तथा साधु संग। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है ना, तो पहला काम हम ये करेंगे कि ऐसे शुद्ध वैष्णवों की संगति करेंगे जिनके अंदर प्योरिटी है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति फेथ है। तो श्रद्धा तथा साधु संग, और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्ति में संलग्न हो जाता है। फिर क्या करता है, जैसे वो करते हैं वैसे भजन क्रिया करता है, जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित होती। ऐसा नहीं कि बस श्रद्धा हो गई और किसी से भी दीक्षा ले ली, नहीं, पहले शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है, उसके बाद भजन क्रिया को बहुत दृढ़ करना होता है, उसके बाद उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल भक्ति कार्य। पहले तो दीक्षा लेते हैं किसी शुद्ध वैष्णव को खोजकर, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे उनके आदेश होते हैं भक्ति कार्य, उनको संपन्न किया जाता है। इसे यहाँ पर श्रुतिक्षित शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। श्रुतिक्षित मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। अब यहाँ शिला प्रभुपाल जी बता रहे हैं कि श्रुतिक्षिप्त का मतलब ये नहीं है कि किसी से भी आप सुन लो, नहीं, प्रामाणिक होना चाहिए। वो प्रामाणिक मतलब वो एक शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में होना चाहिए, प्रामाणिक हो जो कि स्वयं रूल्स पे चलता हो। वो रूल्स बनाता नहीं है, वो अपने आचार्यों के रूल्स के ऊपर चलता है। जैसे जैसे शुद्ध वैष्णवों ने जो प्रणाली भक्ति की स्टार्ट की है, उसी के अनुसार जब चलता है तो उन्हीं से सुनना चाहिए। और जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं, मतलब सारे वैदिक जो ज्ञान है उनको शास्त्रों के, जैसे हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद जी जब अपना तात्पर्य लिखते हैं तो सारे वैदिक जो मंत्र होते हैं, जो श्लोक्स होते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं, मतलब उनको संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। वो संसार में अपना मान बढ़ाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा कराने के लिए वो नहीं सुनाते, बल्कि क्यों सुनाते हैं, ताकि वो भगवान के भक्त बना सके, ताकि वो लोगों को भगवान की प्रेम, भगवान से प्रेम करना सिखाएं, और वो स्वयं भी हमेशा अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। इसी तरह से वे कहते हैं कि संसारी आवेश से मुक्त होते, मतलब संसार की किसी वस्तु में उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ भी, ना ही उनको, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना जन्म ना धनम ना सुंदर्यम कविता व जगदीश कामये, ना उसको सुंदर स्त्रियां चाहिए, ना उसको धन चाहिए, ना उसको अच्छा जन्म चाहिए, उसको क्या चाहिए, वो उसे तो सिर्फ और सिर्फ अहितु की भक्ति चाहिए, भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा, इसके अतिरिक्त और किसी चीज में उसको आनंद नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा शुद्ध वैष्णव होता है जो संसारी आवेश से मुक्त होता है। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है। फिर इस तरह से ऐसे व्यक्ति से यदि हम सुनेंगे तो फिर हमारे हृदय में भी भौतिक कामना नहीं रहेगी, सो फिर रहित हो जाएंगे, और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। और ऐसे शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वो जब सुनाते हैं तो आपका खुद ब खुद उस भक्त, उस भगवान के छवि के प्रति आकर्षण इतना तीव्र हो जाता है और उनसे प्रेम करने लगते हैं। तो भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा में के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि अब नए तरह से आपको कोई व्यक्ति मिल गया जिसके कारण आप किसी नई सेवा में, नहीं, हम लोग स्टार्ट से ही भगवान के दास हैं, शुरू से ही भगवान की किसी न किसी सेवा से। अब दास हो, जैसे आपके घर में
अगर समझो 10 नौकर हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक एक सर्वेंट जो है उसका कोई काम नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ। किसी कंपनी में हम देखते हैं कि 1000 ना वो वर्कर्स होते हैं, तो 1000 हो या 10,000 हो, सबका कोई ना कोई तो काम होगा ना। उसी तरह से भगवान ने जितनी भी जीव है ना, जितनों को भी बनाया, हम सब भगवान की नित्य दास हैं, हमारी सबकी कोई ना कोई सेवा है। आध्यात्मिक लोक में आपकी एक पर्सनल सेवा है भगवान की। जैसे भगवान के पूरे दिन में दिनचर्या में आप एक न एक सेवा आप भगवान की आपको ही करनी है। भगवान के पास बहुत सारे दास हैं और बहुत सारी सेवाएं भी हैं, तो हम नित्य दास हैं। और विशेष रूप में हमारा जो आकर्षण है वो इसीलिए है क्योंकि मूलतः हम उसी सेवा से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैधि भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य स्वरूप के साथ उसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह वह पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। तो ये वैधि भक्ति जैसे जैसे हम करते हैं, विधि विधान का पालन करते हैं, जैसे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है कि अपने नियमों का पालन करना है, नाम जप करना है, संध्या मंगला करनी है और भगवान की सेवा प्रसाद ऑफर करना, तो जो ये वैधि भक्ति है उसको करते करते जीव जो है वो भगवान के नित्य रूप के साथ उसी तरह से जुड़ जाता है जैसे पहले है। तो पहले से ही नित्य आसक्ति तो होती है लेकिन ये वापस से याद हो जाती है जब हम वैधि भक्ति करते हैं। तो भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। स्वरूप सिद्धि का मतलब भगवान की 5 रसों में जैसे सेवा होती है, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस या सखा रस में, तो ये जो रस हैं वो हमारे अंदर पहले से ही है। तो जैसे जैसे हम वैधि भक्ति करते हैं ना, तो स्वरूप की सिद्धि होने लगती है, हमको हमारा वास्तविक जो दिव्य धाम में हमारे भगवान के साथ जो संबंध है ना वो याद आने लगता है। तो भगवान शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में आसीन हो जाते हैं और उस इस तरह भगवान भक्त से विलग नहीं होते, जैसा कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रमाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि हर किसी की बस की बात नहीं है कि भगवान को उस स्वरूप में प्रकट कर ले, क्योंकि भगवान के लिए वो जो शुरू से प्रोसेस आ रहा था ना, पहला क्या है श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे तो निष्ठा भगवान के अंदर इतनी पक्की निष्ठा होगी, फिर रुचि होगी, फिर भगवान के साथ हमारा प्रेम बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, उसके बाद जाकर हमारा भगवान के साथ जो प्रेम है, भगवान जो स्वरूप धारण करेंगे जैसा हम चाहेंगे वैसा भगवान के साथ मिलन होगा और हमारा नित्य स्वरूप हमें प्राप्त होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अकस्मात ऐसे ही नहीं कि कल तुम भक्ति में आए और ऐसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता, हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता। तो प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं जो अपनी इंद्र तृप्ति की सेवा में लगे रहते हैं, जो जिसको अभी तक संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा है वो इंद्र तृप्ति है, चाहे वो किसी भी वस्तु की हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की हो, भौतिक व्यक्तियों की हो या भौतिक मान पूजा या प्रतिष्ठा की हो, कोई भी वस्तु की इच्छा जब तक हमारे हृदय में है ना, इंद्र तृप्ति कि जब थोड़ी सी भी इच्छा जब तक रही होगी ना, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ये लिख कर रख दो अपने पास। भगवत प्राप्ति तब भी होगी जब हृदय के अंदर केवल एक इच्छा होगी कि कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। जब भी भगवान के सामने जाओ, भले हमारे हृदय में 100 इच्छाएं हों, लेकिन ये बात कहने का ये अभ्यास करना है हमको, कृष्ण केवल आप चाहिए हो, बस मुझे केवल आप चाहिए हो। ये कहते 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 एक दिन बाकी सारी जो इच्छाएं हैं ना इंद्रिय तृप्ति की, वो बहुत दूर चली जाएंगी। और साथ साथ में अपने आप को जज भी करते रहो कि कहीं कोई दूसरी इच्छा तो हृदय में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गोल है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। और वास्तव में भक्तों, एक बहुत बुद्धिमानी भी है कि रब से मांगो तो रब को मांगो, जो रब तेरा तो सब तेरा, क्या रह जाएगा, कृष्ण मिल जाएगा उसके बाद। तो बहुत ही हमको ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि हम भगवान के सामने जाते हैं और संसार मांग लेते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कभी भी उन क्षत्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा करने वालों के सामने तो कभी आते नहीं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी क्षत्म भक्त के आदेशवाहक नहीं बन सकते, अपितु वे उस शुद्ध अबुद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि समस्त प्रकार के भौतिक दूषण यानी भौतिक संसारिक कोई भी उसके अंदर अपराध नहीं होगा, तब भगवान आके उसके समक्ष प्रकट होंगे। तो हमें अपने अपराधों को ज़्यादा नोट नहीं करना है कि कहीं मेरे अंदर ये अपराध है या ये अपराध है। हमको अपनी भक्ति को इतना सिंसियर करना है, अपना नाम जब इतना प्योरिटी के साथ करना है, इतना प्योरिटी के साथ नहीं होता है, पता है नहीं होता है, फिर रो के भगवान को कहो कि भगवान अगर इस जन्म में चूक गए फिर तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें प्राप्त करना। ऐसे तो महाप्रभु कहते हैं कब वो दिन आएगा जब मैं आपके नाम लेते हुए अपने मेरे नेत्रों से अश्रु धाराएं बहेंगी, कब गदगदित होकर मेरा कंठ रुद्ध जाएगा, कब मेरा पूरा शरीर रोमांचित होगा, वो दिन कब आएगा। तो महाप्रभु तो सदैव ऐसे ही कीर्तन करते थे, ये हमारे लिए है, कब वो समय आएगा। तो भगवान को, भगवान के नाम में रोना ना आए तो भगवान को रो कर कहो कि कब रोना आएगा। तो ये जो हमारा मार्ग है वो कृपा का मार्ग है, और जितना जितना हम सिंसियर रहेंगे, जितना जितना हम द्वेष नहीं करेंगे दूसरों के साथ, सब जो भी है सब सही है, कुछ गलत नहीं है। जो संसार में भगवान ने उत्पन्न किया है वो सब अब हर किसी के अंदर, ये भगवान का इतना ऐश्वर्य है, ये भगवान की इतनी परिपूर्णता है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण डाला है। तो दोष देखने की वजह में सबका गुण देखो, हमें नहीं देखना चाहिए कि वो प्योर भक्त है उससे भगवान पता नहीं दर्शन देंगे या नहीं देंगे, वो पता नहीं वो तो अभी इतना प्योर नहीं है, उसको नहीं मिलेगा भगवान का दर्शन। तो वो कौन है क्या कर रहा है, दिस इज नॉट आवर हेडेक। हमें ये देखना है क्या हम इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, क्या हम इतनी प्योरिटी के साथ भक्ति कर रहे हैं, क्या हम इतना अच्छी साधना कर रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिए हैं कि किसी प्रामाणिक वैष्णव से श्रवण करो, फिर भजन क्रिया करो, फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाओ, क्या ये हम कर रहे हैं, क्या हम अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ अपने को देखना है, क्योंकि भगवत धाम की ओर हमें अकेले जाना है, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ जो हमारा नाम जप है ना वो हमारे साथ चलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए।
कि मैं अपनी भक्ति, अपनी सेवा, अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।